ओम शांति। एक बार हम सब लोग उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में सभी ब्राह्मण वत्स मिलके ब्रह्मा बाबा के साथ ओम ध्वनि करते थे। अब तो हम सब ओम शांति बोलते हैं, तब तो केवल ओम ध्वनि होती थी। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति का महामंत्र जो बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है, ये ही वास्तव में सभी समस्याओं का हल है। और जब भी हम यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ शब्द सुनते हैं, कहते हैं, भले ज्ञान मार्ग में हो या न भी हो, भक्ति में भी यज्ञ कहते हैं, तो एक ऐसी पिक्चर घूम जाती है कि यज्ञ किया ही तब जाता है जब कोई विपदा हो, मानो बरसात ना हो, सूखा पड़ा हो तो यज्ञ करते हैं, या अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, कोई महामारी हो, कोई भी दुख आपदा हो, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यूजुअली यज्ञ किया करते हैं। तो जब हम कोई भी बात करते हैं यज्ञ स्नेही अथवा यज्ञ रक्षक, यज्ञ सहयोगी कोई भी बात, तो मन में ऑटोमेटिकली यज्ञ ये अक्षर ज्यादातर हम तब उच्चारण करते हैं वर्तमान समय, जब हम बच्चे ज्ञान में आ गए हैं। और यज्ञ स्नेही की बात करते हैं तो मन में वो हमारी यज्ञ में आने का शुरुआत के दिन बुद्धि में आ जाते हैं। जब यज्ञ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए हमें किसी ने इनवाइट किया, हम आए, देखा, सुना, अच्छा लगा, और फिर धीरे धीरे या तो जिसने निमंत्रण दिया उसके प्रभाव में, अथवा जो निमित्त सेंटर पर रहने वाली बहनें आदि हैं उनके स्नेह में, प्रेम में, ज्ञान की बातें सुन करके हम यज्ञ की तरफ खींचे चले आए। तो यज्ञ स्नेही तो हम सब के मन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से घुसा हुआ है कि कोई ना कोई प्रकार का स्नेह, प्रेम, प्यार कोई प्राप्ति, कोई भी चीज की जब अनुभूति होती चली गई हमें, तो यज्ञ में हम और घनिष्ठता आती चली गई हमारे। फिर जब स्नेही हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सहयोगी भी जीवन में बन जाते हैं। बस जितना यज्ञ के निकट आते हैं, बस देखते हैं ये यज्ञ है, हमारा परिवार है, बहुत शांति का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का, आत्मा के अनेक गुणों का अनुभव होता चला जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली न चाहते भी सहयोग देने के लिए मन बुद्धि निर्णय करती है और हमारा तन मन धन समय शक्ति सब का सहयोग हम देते चलते हैं यज्ञ में। तो मुख्य बात यही है कि यहाँ पर तो हम सब आए हैं, आप सब लोग जो बैठे हैं वो हैं ही यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, और कर ही रहे हैं, इस मार्ग में आगे बढ़ ही रहे हैं। अब बात आती है यज्ञ रक्षक की। वो यज्ञ रक्षक का प्रश्न भी तभी उठता है जब कहीं पर यज्ञ में कोई ना कोई मुश्किलात, डिफिकल्टी अथवा कोई ऐसी बातें आती हैं जो यज्ञ की उन्नति में बाधक होती हैं। तो हम फिर यज्ञ रक्षक की बात करते हैं, सोचते हैं और उस राह का, कि जिस राह पर कोई भी किसी के अंदर भी यज्ञ भक्षक होने का संकल्प मात्र भी न हो, यज्ञ को नुकसान देने वाली बात, यज्ञ को ऐसा कि जो हम चाहते हैं यज्ञ अपनी चरम सीमा पर और बाबा ने जो हमें राह बताई कि संपूर्ण बनना है, उस मार्ग पे जब बीच में कोई न कोई विघ्न आते हैं, मुश्किल आती हैं, माया के वार होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये जो डिफिकल्टी आ रही हैं, कैसे इन सब से हम पार करें। हम सभी अनुभवी हैं क्या क्या मुश्किलात आती हैं यज्ञ में। जब आते हैं बाहर की दुनिया का देख करके, फिर हम अपने यज्ञ के भाई बहनों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर लगता है। यहाँ पर कितना निस्वार्थ प्रेम है, शांति है, आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है, कमजोरियों और विकारों पर विजय प्राप्त होती चली जा रही है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बस बाबा ने हमें पहचान दी हुई है कि किस प्रकार से उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करें। और उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करके कैसे अपने मंजिल को प्राप्त करें। तो विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं अपने पुराने संस्कारों की वजह से, समस्याओं की वजह से, कोई भी संबंध की वजह से कोई, तो हम समझते हैं विघ्न आया और जितना भी हमारा अनुभव होता है हम उसे पार करने का प्रयास करते हैं। अक्सर करके हम सब चीजों को का दोष माया पर दे देते हैं, बस ये माया आ गई है, कोई समस्या भी आई ये भी माया। वास्तव में किस प्रकार का अंतर विघ्न में और माया में होता है यह तो हम सब समझते हैं, क्या अंतर होता है विघ्न में और माया में, कभी सोचा? विघ्न जो होता है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। माया हमारी जो कमजोरी है। विघ्न आया, मानो हम क्लास में जाने के लिए निकले और बाहर देखा स्कूटर या कार में पंचर है, वो ये विघ्न हो गया, प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद जो मन के अंदर संकल्प आए, चलो आज नहीं जाते हैं या अब किस प्रकार से जाना है, रिक्शा ऑटो रिक्शा करनी है, वो माया पर फिर विजय पाने के संकल्प होते हैं कि अंदर से तो माया कहेगी चलो एक दिन नहीं गए क्या हुआ, यहीं पर ही मुरली सुन लेते हैं, वो पुराने संस्कार कमजोरी वो माया है, वो अंदर से आई है विघ्न के फल स्वरूप। विघ्न तो बाहर से आया, थोड़े समय के लिए आया, उसे पार करने के साधन भी स्थूल बाहर के होते हैं, लेकिन फिर जो फर्दर संकल्प चलते हैं वो है माया। तो इसलिए विघ्न और माया का अंतर पहले तो हमारे अंदर स्पष्ट हो। दूसरी बात, समय समय के अनुसार समस्याएं आती हैं और परिवर्तन होती रहती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो एक हमें ये देखना है कि जिस समय जो परिस्थिति आई, समस्या आई, वो समस्या या तो हमें अनुभवी बनाने के लिए आई है या वो समस्या हमारा अभी तक हम कितने ज्ञान में मजबूत हुए हैं टेस्ट ले रही है और उस पर विजय पाते पाते फिर अंत में हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कोई भी जो परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आती है, वो एक जैसी नहीं होती, माया के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। अभी तक तो हमने ज्ञान में समझा है माया जिन मोटे रूप से आती है, स्थूल रीति से, काम क्रोध लोभ, जानते हैं क्रोध क्या होता है, अहंकार क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, बदले की भावना क्या होती है, इस नेगेटिविटी को पहचानते हैं। इस रीति से अभी तक माया आती है और हम पार करते रहे हैं। लेकिन जितना जितना समय सूक्ष्म होता चला जाता है, निकट आता चला जा रहा है, उतना उतना माया के रूप भी और सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। माया उस रीति से नहीं आ रही है जिस रीति से हम सदैव समझते रहे। स्थूल रीति से तो हम सब जानते हैं अभी तक ना, हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत बातें कही हैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए। तो भारतीय संस्कृति ने एक बात तो ये बताई है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, पूरा पृथ्वी ही हमारी परिवार है सारा। इसको हम मन में जितना रखेंगे उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो अगर कोई समस्या आई भी तो वो समस्या हम सहज पार कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम है तो मोटे तौर पर तो ये समझ लिया पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सब हमारा परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी जैनी सब भाई भाई हैं, भाई बहने हैं, ये समझ लेते हैं। लेकिन पृथ्वी पर केवल मनुष्य मात्र ही नहीं है, और भी है बहुत कुछ। क्या है, देखो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो बस माँ की गोद में ही माँ की छाती से ही लगा रहता है, उसे वहीं से ही दूध प्राप्त होता है और वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे वसुधैव कुटुम्बकम के सबसे छोटे सदस्य कौन से हैं? ये पेड़ पौधे। जब से ये पैदा होते हैं धरती माता के साथ लगे रहते हैं, वहीं से ही उन्हें भोजन प्राप्त होता है। तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, ये हमें एक बुद्धि में रखना है। आज विश्व की ये हैं सबसे छोटे, लेकिन इन्होंने विश्व की एक बहुत बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे दिया है, और ग्लोबल जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की है, जो जंगल कटते जा रहे हैं उसकी वजह से ये समस्या और अधिक बड़ी बड़ी होती चली जा रही है। और आज जो अक्सर करके न्यूज़ में देखते हैं सुनते हैं, या इतनी बाढ़ आ गई, पानी हो गया, बादल फट गए, इसके अंदर कहीं अति गर्मी हो गई, कहीं अति सर्दी हो गई, कहीं पर साइक्लोन आ गया एकदम, तो ये जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, पेड़ पौधे जिनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया पूरा, उनको नष्ट करते चले गए। और इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से पूरे हमारे वसुधा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की उसने जन्म ले लिया। बहुत साधारण है, आप सब जानते हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, क्योंकि मनुष्य मात्र जो हैं, जो जीवित प्राणी, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और ये पेड़ पौधे रिवर्स प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं। तो ये मोटे रीति पर साइकिल चलती रहती है। लेकिन जितना जितना मनुष्य आगे बढ़ता गया उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार और बहुत साधनों का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया, जंगल काटे, लकड़ी चाहिए, पेड़ पौधे नष्ट किए, मकान बनाना है, फर्नीचर बनाना है, उन सब के लिए लकड़ी चाहिए, मोटर है, कार है, और बहुत सारे जितने साधन हैं सब उन साधनों का दोहन कर। तो इस कारण से एक तरफ पेड़ नष्ट हो गए, एक तरफ आबादी बढ़ती चली गई। तो मनुष्यों की आबादी बढ़ती चली गई, यानी ऑक्सीजन लेने वालों की आबादी ज्यादा बढ़ी, और पेड़ पौधे नष्ट हुए, ऑक्सीजन पैदा करने वालों की आबादी कम होती चली गई। तो वातावरण में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता चला गया, और यही पर्यावरण प्रदूषण की जड़ है और इसके कारण ही आज संसार में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। फिर बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा पेट के बल चलना शुरू करता है, थोड़ा खिसकता है आगे, तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं, सांप केंचुआ वगैरह वगैरह, जो पूरा रेंगते हैं पूरा शरीर के बल। फिर और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चलना सीखता है, तो दो पैर दो हाथ चार से घुटने के बल चलता है। तो ये है सब चौपाए, जो गाय भैंस बकरी जितना चार पैर से चलने वाले, ये हमारे परिवार के तीसरे सबसे छोटे सदस्य हैं। समझा? अब सबसे छोटे सदस्य है तो पेड़ पौधे, उनसे बड़े सदस्य है फिर जो जमीन पर रेंगने वाले सांप ये बिच्छू आदि, तीसरे जो चौपाए हैं चार पाए वाले, और सबसे बड़ा मनुष्य हम जो है इस वसुधैव कुटुंबकम के सबसे बड़े सदस्य हैं। तो ये है वसुधैव कुटुंबकम का नारा, जो हमें लेटर एंड स्प्रिट में पालन करना है। वास्तव में इन सब को जब हम पालन नहीं करते, इसकी वजह से ही विश्व में समस्याएं और तभी कई बातें पैदा होती हैं। यज्ञ रक्षक, तो यज्ञ की ही बात नहीं, रक्षा तो सभी चीजों से करनी है। प्रकृति की प्रॉब्लम, ब्रह्मा बाबा ने भी जब पहले साक्षात्कार किए तो उन्होंने साक्षात्कार में भी देखा कि ये प्राकृतिक आपदाएं, विशेष करके प्रकृति के पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये तत्व भी जो है विनाश का कारण बनेंगे। तो इस कारण से वर्तमान समय, बाबा हम बच्चों को समय के अनुसार बाबा शिक्षा देते रहे, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है। हमें याद है जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे 1960s में 70s में, तो उस वक्त तक पर्यावरण प्रदूषण का नाम ही नहीं था कहीं। पर्यावरण की समस्या क्या होती है कोई जानता ही नहीं था, किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता था 60s में। तो बात हो रही थी कि ब्रह्मा बाबा ने भी जब ज्ञान में आए तो उस समय साक्षात्कार किए। सभी जानते हैं, सबने जीवन कहानी पढ़ी है। एक तरफ पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया और उनके कान में आवाज आई, हाँ अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरा ही स्वरूप हो। बाबा ने विनाश का भी साक्षात्कार किया, परिवर्तन का भी। युद्ध हो रहे हैं और बहुत लोग एटम बम वगैरह से मर रहे हैं। उस समय 1936 में तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था एटम का। ये तो 1945 में जब पहली बार हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे और बम के द्वारा विनाश हुआ, तब एटम बम की बात लोगों ने सुनी। और अब तो बस दुनिया ऐसे कगार पर खड़ी है, न्यूज हम सब देखते हैं सुनते हैं, मालूम है कभी भी ये दुनिया में बम की चिंगारी एटम बम का उठ सकती है। फिर दूसरी तरफ कमनल जो विभिन्न संप्रदाय हैं, धर्म हैं, उनमें आपस में बहुत डिफरेंस होते जा रहे हैं, वो होगा। लेकिन मुख्य रीति से जो बाबा ने देखा कि भारतवासियों का जो विनाश होने की बात है, परिवर्तन होने की बात है, वो होगी इन प्राकृतिक तत्वों की हलचल से। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के से विशेष करके जब ये अति हलचल में आएंगे, हम सब जानते हैं भूचाल आता है, धरती हिलती है, तो किस प्रकार से एकदम बड़े बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाते हैं, विनाश हो जाता है आदि आदि। तो इन सब के द्वारा जो होगा, और तब बाबा ने देखा कि बस स्टार से ऊपर से स्टार जैसे हैं आत्माएं परम धाम में, वो आ रही हैं पृथ्वी पर, कोई राजकुमार बन रहे हैं, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, और इस प्रकार से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और बाबा के कानों में आवाज सुनाई दी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो एक तरफ बाबा ने परिवर्तन देखा या विनाश कहें, दूसरी तरफ स्थापना भी देखी। तो हम लोगों को भी जो वर्तमान समय हम सब यज्ञ रक्षक का पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम सबको भी ये दोनों बातें बुद्धि में कि हम स्थापना के भी निमित्त हैं, और ये जो विश्व परिवर्तन हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो इसमें भी हमारे वाइब्रेशन, हमारे जो भले ये वैज्ञानिक रीति से विनाश होगा, बहुत बम गिरेंगे, प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के तत्वों के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा जीवन का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए ये साकार बाबा के साथ मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बाबा मामा के साथ। तो हमने देखा कि बाबा किस रीति से प्रकृति के तत्वों को भी ना पावन करने का कार्य करते थे, वो भी होता था, और साथ साथ प्रकृति का विनाश तो समय प्रति समय हम सब लोग थोड़ा बहुत देखते ही, और ये वर्तमान समय भी चल रहा है, चारों तरफ विनाश की लीला। तो अभी हमें क्या करना है, कैसे यज्ञ रक्षक की तरह, तो बाबा समय प्रति समय बता रहा है। तो एक बात तो वर्तमान समय के हिसाब से बाबा ने बताया है, बच्चे अब आप बच्चों को बहुत बहुत रहम दिल बनना है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे, देख रहे हैं चारों तरफ बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, और पुराने पुराने बच्चे भी हैं, नए भी बच्चे भी हैं, लेकिन हमारे संस्कार 100% तो अभी एकदम नए नहीं हुए हैं, कभी कभी पुराने संस्कार भी जागृत होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ये ही जब हमारा परिवार है, तो इस परिवार में, सतयुग में भी यही परिवार चलेगा, भले नाम रूप अलग अलग होंगे, लेकिन होगा ये ही परिवार। तो इसीलिए हमें ये देखते चलना है, इस परिवार के साथ हमारा कितना मधुर संबंध है, मीठा संबंध है, कोई भी मन भेद मतभेद तो नहीं, किसी के प्रति कोई वैर भाव तो नहीं। क्यों? क्योंकि यही परिवार चलेगा, और सतयुग में तो मत होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी के प्रति बदले की भावना वैर भावना नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर है तो हमें क्या करना है, कई बार चलते चलते परिवार, लेकिन उन परिवार के सदस्यों में भी आपस में हमारे मन में भेदभाव पैदा हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि बस किसी के प्रति हमारे अति स्नेह हो जाता है, किसी के प्रति वैर भाव जब दुश्मनी की भावना होती है तो ये जो है बड़ी हानिकारक इसलिए है क्योंकि कहा जाता है अंतमति सोगति। तो अंत में व्यक्ति को याद ही वो आता है, कहते हैं, जिससे या तो अति स्नेह हो या अति दुश्मनी का भाव हो, बदले की भावना हो। तो परिवार के अंदर कई कारणों से हमारे संबंध सबके साथ एक जैसे तो रहते नहीं है, इसीलिए किसी के साथ अति स्नेह के संबंध होते हैं, जब तक उनसे आपस में कुछ देर क्लास के बाद भी आपस में मिल के स्नेह की बातें कुछ नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं पड़ता। और किन्हीं के साथ अगर सामने से भी आ रहे होते हैं तो ओम शांति भी नहीं हो पाती, बस वो आए इधर से निकल गए, हम इधर से निकल जाते हैं और मेल मिलाप नहीं हो पाता। तो रहम दिल की इसीलिए आवश्यकता है कि जितना अभी हमारे अंदर रहम दिल की भावना होगी उतना ही क्षमा की भी भावना होगी, क्योंकि रहम दिल अगर होता है किसी के प्रति तो उसके से दुख नहीं होता। नहीं तो अक्सर ये होता है कि अरे ये भाई या ये बहन इतने सालों से 40 साल से ज्ञान में है, अभी भी इनमें ये संस्कार, इतना क्रोध, इतने अहंकार की बात, इतना ईर्ष्या की बात। तो ये बात अगर देखते हैं किसी के अंदर, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, बात को भूल नहीं पाते, और फिर ये बात हमें परेशान करती रहती है। बार बार सामने जैसे ही वो व्यक्ति आएगा उसकी ये पुरानी बात तुरंत हमारे मन में बड़े रूप में एकदम पैदा हो जाएंगी और हमारे पुराना दुश्मनी का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए या किसी से अति स्नेह भाव होता है तो अंत में भी वो अगर याद आया तो बाबा ने तो बोला है किसी से भी न अति स्नेह न कोई वैर भाव। भक्ति मार्ग में भी कबीर दास जी भी बोल के गए हैं, हम सब ने सुना है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से प्रेम हो न किसी से दुश्मनी का भाव हो, समान भाव हो, तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ब्रह्मा बाबा में भी हमने देखा, कई बार बहने आके बता देते थे बाबा को, बाबा फलाना भाई है ये बहुत बाधक है सेवा में और ये यज्ञ के लिए हानिकारक है। तो बहुत आते थे, बहने एक्सपेक्ट करती थी बाबा उसको सावधानी देगा, लेकिन हमने खुद देखा, हमारे साथ भी ग्रुप में ऐसे एक भाई आए, बाबा ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, और आओ बच्चे भोजन करते हैं, साथ में भोजन कराया आदि आदि, कि वो बिल्कुल पानी पानी हो के चला गया। बहन ने कहा, बाबा हमने तो बताया था ये बहुत ज़्यादा यज्ञ के लिए हानिकारक है और बहुत यज्ञ में विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसीलिए बाबा ने इसे अति स्नेह दिया है, अगर वो दूसरे रीति से बाबा हैंडल करता तो ये और ज़्यादा दुश्मन हो जाता। और उसके बाद वो बहुत बहुत परिवर्तन उसके अंदर हो गया और यज्ञ स्नेही बन गया। तो कहने का भाव ये है कि अभी वर्तमान समय हमें ये देखना है, प्रेम भाव सबके लिए हो, लेकिन अति प्रेम भाव किसी के लिए नहीं, सबके प्रति एक जैसी भावना हो, रहम दिल, ये बात है। और जितना रहम दिल होंगे उतना उतना क्या होगा, उतना उतना हमारे अंदर दातापन की प्रवृत्ति आती जाएगी। दे चलो, नहीं तो लेने की बजाय देते चलो। जितना देने का संस्कार हमारे अंदर होगा उतना उतना हम रहम दिल भी बनते चलेंगे, और रहम दिल होगा तो दाता बनते चलेंगे। और हमें क्या देना है, बस यही प्रकृति की तरह पांच तत्व जो हैं इनकी तरह देते ही चलना है। धरती है, धरती देखो सब चीज देती है, पृथ्वी दाता है, तो ऐसे ही हम दाता बन के देते चले। और चीजों की तो लिमिटेशन है कि धन दो, कपड़ा दो, अन्न दो, उसकी तो लिमिटेशन है। हो सकता है हम उसके लिए आर्थिक रीति से संपन्न न भी हो, लेकिन प्रेम है, स्नेह है, सत्कार की भावना है, आदर है, और उनके प्रति हम बहुत बहुत ऐसा भावना रखते हैं, कल्याण की भावना, जो बाबा बोलता है शुभ भावना, शुभ कामना, उनको हम देते चलेंगे धरती की तरह। तो क्या होगा कि जितना भी धरती में भूकंप आएगा, कभी एकदम ऐसी प्रॉब्लम होगी, बहुत हिलेगी, अंत में तो ये सब बहुत आना ही है, बाबा ने पहले ही बता दिया। लेकिन हम लोग अगर धरती की तरह ये दाता बन के चलते रहे, तो धरती से जैसे हमने मित्रता कर ली, या एक जैसे संस्कार होते हैं ना मित्रों में, तो धरती में भी देने का संस्कार और हमने भी यही देने के संस्कार अपने अंदर धारण कर लिए धरती की तरह, तो मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है, मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता। तो धरती जितना भी हिलेगी वो हमारे प्राण नहीं होगी, हमारे मन के अंदर संकल्प, हमारे पांव उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। इसीलिए हमें प्रकृति तत्वों के साथ अपने सभी संस्कारों को भी मैच करते चलना है, तब हम सही रीति से यज्ञ रक्षक बन सकेंगे। यज्ञ में स्थूल रीति से होता है तो यज्ञ रक्षक और बनने के लिए, और स्नेह भाव, प्रेम भाव, मित्रता, ये सब तो हो ही, धरती का बताया ना, मानो बाबा ने बताया है बंबई वालों को भी कि जो समुद्र के किनारे हैं वो सब जैसे जल में समाने की प्रवृत्ति रहेगी, उनकी समा जाएंगे, जल को सुखा करके उन्हें जमीन बनाई है, तो कैसे रक्षा होगी हमारी। तो बाबा ने बोला, बच्चे मैं बंधा हुआ हूं बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन ये प्रकृति के तत्वों को भी ना हमें उनसे मित्रता करनी है, उनसे हमें प्रेम भाव। जल का क्या गुण होता है, जल का संस्कार जैसे पृथ्वी का संस्कार धारण किया, अचल अडोल, और पृथ्वी दाता है, इसी तरह जल का मुख्य संस्कार कौन सा है, शीतलता। और जल का मुख्य संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी माने जल जो है ना एडजस्टेबल है, हर चीज में समा जाता है। गिलास में लो, गिलास का रूप धारण कर लेगा, कटोरी में लो कटोरी का रूप, चम्मच में लो चम्मच का रूप, थाली में लो थाली का रूप, जल सब में एडजस्टेबल। तो हमारी नेचर भी ऐसी एडजस्टेबल हो, हम हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ये ना कहें कि इसके साथ तो एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, इसके साथ मैं एडजस्ट होके चल सकती हूँ या चल सकता हूँ, नहीं, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सकें, तो इसका मतलब हमने जल का गुण धारण कर लिया, और जल में एक विशेष गुण ये होता है, जल सदैव आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। जल बढ़ रहा है, सामने बड़ा पत्थर भी आ गया, बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन भी आ गया, तो जल इधर उधर होके अपना रास्ता बना लेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अगर जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जल की तरह हम एडजस्टेबल नेचर धारण करें। हर आत्मा के साथ हम दूसरे को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने को तो बदल सकते हैं ना। हमारी नेचर तो हमारे साथ है। अगर किसी की नेचर हमारे से एकदम विपरीत है और हम अक्सर करके उसे बदलने में लगे रहते हैं, तो उसको हम न बदलें, बल्कि हम ये प्रयास करें कि मैं आत्मा बस अपने को ऐसा एडजस्ट करूं कि उसके साथ एडजस्ट होके चल सकें, तो कभी भी आपस में टकराव नहीं होगा। और हम जल को हमने मित्र बना लिया, जल कभी भी हमारे तकलीफ का, कष्ट का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल तो मित्र हो गया और मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है। तो इसी तरह सभी तत्वों के गुणों को हम अध्ययन करें। वायु में गुण होता है हल्का होने का, तो हम कभी भी किसी परिस्थिति से भारी ना हो, जीवन में हल्के हो करके चलते रहें, नहीं तो कई बार कोई विपरीत परिस्थितियां हमें भारी कर देती है। बोलने का दिल नहीं करता, खाने का दिल नहीं, एकदम जब भारी हो जाते हैं, नहीं, वायु की तरह अगर हम हल्के रहेंगे तो क्या होगा, जितने भी वायु के साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां वायु पैदा कर देती हैं, विनाशकारक परिस्थितियां, तो हम उन परिस्थितियों के वश में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। इसी तरह सूर्य का गुण है गर्मी का देने का, और गर्मी में एक विशेष शक्ति होती है कि आग में कोई भी चीज डालो, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरह हम ऐसा ज्वालामुखी योग रहे हमारा कि हम हमारे सामने कोई भी आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। रोता हुआ आए, बस हमारा चेहरा देखे, बाबा कहता है अब सेवा करने का जो समय है वो है आपकी चाल चलन, चलन और चेहरा, उसके द्वारा आपकी सेवा हो। भाषण देने का समय, बोलने का समय, वो काफी हद तक चला गया, अब ऐसा समय आ रहा है आपका चेहरा ही ऐसा हो जो संदेश दे दे, नैन ऐसे श्रृंगारित हो दिव्य रीति से कि नैनों द्वारा वो एक शुद्ध पवित्र संकल्प लेके जाए, नैनों में इतनी दिव्यता हो। इसी तरह कहा जाता है श्रृंगारित बाबा को वो भी श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। अब बाबा ने मुख्य रीति से बताया तीन प्रकार के श्रृंगार हैं, वो एक है तिलक, एक ताज, एक तिलक और एक तख्त, जो बाबा बोलते हैं बाबा के दिल का तख्त। तो इस तरीके से अपने को सदा श्रृंगारित रखो। ताज जो है वो पवित्र प्रवृत्ति का प्रतीक है, तो इस कारण से वो अपने को श्रृंगारित रखो। इसी तरह तिलक है, बाबा ने बताया, आजकल भी बाबा काफी रिपीट करते हैं, मैं पूर्वज और पूज्य। पूर्वज जो होता है ना, वो पूर्वज सबका ख्याल रखता है। पूर्वज माने बुजुर्ग, घर का बड़ा, तो हम लोग भी तो सतयुग के आदि काल से आई हुई आत्माएं हैं, तो हम पूर्वज हैं, पूज्य भी हैं, सतयुग से हमारी मूर्तियों की पूजा होती है, तो इसलिए पूर्वज पूज्य समझ के वो हमारा रक्षक का व्यवहार हो सबके प्रति, बड़प्पन का, हरेक हमें अपना समझे, ये मेरे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को हरेक अपना समझता था, बस बाबा के सम्मुख गया, बाबा ऐसे हाथ फैलाओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस बाबा ने कहा और हम चुंबक की तरह खिंचे हुए बाबा की बाह में आ जाते थे, और बस वहां जाके चूंकि बाबा ने खुद अभ्यास इतना किया हुआ था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, जितने परिवार के सदस्य थे सबका और बाकी और का भी अभ्यास किया था, तो जैसे ही हम बाबा के स्पर्श में आते थे या बाबा के नैन मुलाकात करते थे, तुरंत अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे, फिर बाबा बड़े प्यारे, हाँ बच्चे आओ आओ, बस बाबा धीरे से जैसे हमें देह में खींचता था और फिर हालचाल पूछता था, हम भी बाबा को हालचाल बताते थे। तो एक तो रक्षा ये कि हमारे व्यवहार से, स्नेह से, हमारे जितनी आत्मा में शक्ति है उस शक्ति का हम संचार दूसरों में करते रहे, सकाश देते रहे, ये रक्षा का अब समय आया हुआ है। जब बहुत लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा कि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं, ऐसे भी बाबा के बच्चे होंगे, बस होगा बुद्धि में भाई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाहिए उतनी शक्ति उनमें नहीं होगी कि उससे दूर चले जाएं, और इसके विपरीत ये करना चाहिए वो करने की हिम्मत ताकत उनमें नहीं होगी। ज्ञान भी है लेकिन अगर वो शक्ति नहीं है तो वो हमारा कर्तव्य है ऐसे बच्चों की भी रक्षा करना, उनको सकाश देना, शक्ति देना। तो ये बराबर शक्ति और सकाश हम सब बच्चों को देते चले, और वो तभी होगा जब हमने अपने अंदर वो शक्ति भरी हुई होगी। तो एक तो ये भाव, और ये भाव कैसे आएगा, हम दूसरे की कमी कमजोरियों को नजरअंदाज करें, देखे ही नहीं, और बस योग द्वारा सकाश देते रहे। अभी भी हम योग में बैठते हैं तो ज्यादातर का ये अनुभव होगा कि योग में बैठे लेकिन काफी समय व्यर्थ में चला गया, जहां पर बुद्धि का लगाव है, झुकाव है, वो बात बुद्धि में याद आ गई, जो बाबा को बैठ के याद करना चाहिए वो याद नहीं रहता। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, बाबा ने कहा एकाग्रता। तो इसीलिए यदि हम रियल सेंस में रक्षक बाबा के बनना चाहते हैं, यज्ञ के रक्षक, तो हमें रहम दिल, दया का भाव और एकाग्रता ये अपने अंदर धारण करनी होगी, जिससे एकाग्र चित्त होके हम किसी को भी सकाश और शक्ति दे सके। और एकाग्र चित्त तो बाबा ने बताया है कि वो आएगी जितना हमें एकांत का अभ्यास होगा। एकांत माने एक की याद में अंत। एकांत वो भी है कि जंगल में चले गए और परिस्थितियां आई, कोई विपरीत परिस्थिति, उससे डिटैच कर लिया अपने को, लेकिन हमारा अंत एकांत, एक की याद में अंत हो, वो लक्ष्य हमारा रहना चाहिए। और इकोनॉमी हो, जितने हमारे समय और संकल्पों की इकोनॉमी होगी, कम खर्च होंगे उतनी हमारी शक्ति अंदर इकट्ठी होती जाएगी, उतना हम एकाग्रचित होके बाबा को याद कर सकेंगे, उतना अंत समय में हम सब व्यर्थ संकल्पों को भगा सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार अपने अंतिम स्वरूप का आवाहन करना चाहिए। हमारी अंतिम स्थिति क्या है, बाबा का हमने देखा, हमें एक सौभाग्य और प्राप्त है कि 18 जनवरी 1969 को, यद्यपि हम बहुत दूर पोस्टेड थे, ONGC में आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन बाबा ने अंत समय हमें अपने पास बुला लिया और अपने पास बुला के यहाँ पर हम 17 जनवरी की सुबह पहुँच गए और 17 और 18 जनवरी को बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। वो हम सबको भी प्राप्त करनी ही है, अंतिम कर्मातीत अवस्था। तो उसमें हमने देखा, खास करके आप सब भी गौर से सुनना, कि उसका लक्षण एक तो ये देखा कि हमेशा बाबा से जब मिलते थे हम बाबा को अपनी बात बताते थे, कोई समस्या बाबा समाधान करते थे, उत्तर देते थे, लेकिन अंतिम दो दिनों में हम बस जब बाबा के पास जितनी बार गए, लगभग 6 बार बाबा से मिले 17 और 18 जनवरी को, तो बस बाबा नैन मुलाकात करते थे और नैन मुलाकात करके बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब समस्या भी बता देते थे, मन में क्या चल रहा है वो बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। तो ये रक्षा करने का एक अंत समय लोग हमारे सामने बहुत आएंगे, बहुत व्यथित होंगे, संसार की हालत बहुत बहुत ज्यादा कष्टदायक हुई, जो बाबा ने आज या कल भी मुरली में बोला, दुख का पहाड़ टूटने, अभी तो और बहुत बहुत दुख आने हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तो वो कुछ वर्णन नहीं कर सकेंगे, लेकिन इतने ज्यादा व्यथित होंगे दुख, तो हमारी ऐसी स्थिति हो बाबा की तरह कि बस नैनों में देखा, उसके मन के भाव को जाना और फिर उसे उतना सकाश दिया, उसका समाधान उसे दे दिया। तो एक यज्ञ रक्षक का अंत समय का ये हमारा पार्ट भी चलना है। एक रक्षा स्थूल चीजों की होती है, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, वो सब वो तो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, लेकिन हमें जो है आत्मा को बल देने की सेवा करनी है, सकाश देना है। और दूसरी बात, अंत समय वो चीज याद आती है, कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम हो, बचा हुआ काम हो, अंत समय हमें वो याद आता है, अरे मानो हमें कोई ऐसा काम करना, धन दान करना था सेंटर बनाने के लिए, कोई मन में इच्छा थी, फिर भी हम कई बार सोचते हैं कल कर लेंगे, कल को चले जाएंगे, दे देंगे बस, और इतनी देर में अगर अंत समय आ गया तो वो रह गया, आत्मा वही संस्कार लेके जाती है, तो बहुत बहुत दुखी हो जाती है, बाबा मैं ये नहीं कर सका। यहाँ कई बार भोग लगाते हैं, आत्मा चली जाती है, तो वो आत्मा आके बताती है, हाँ, कि बस मैं ये चाह रहा था करना, बच्ची को यज्ञ में समर्पण करना चाह रहा था, ठीक है ये बाद में कर देंगे, ये हो जाएगा, अभी नहीं, और बस मैं तो ऊपर आ गया। तो इस तरीके से कोई पेंडिंग काम ना हो बचा हुआ, जहां तक हो सके वो कामों को हम पूरा कर लें, जो अच्छे कामों को हमने संकल्प किया हुआ है, नहीं तो अंत समय वो याद आएंगे, और वो याद आएंगे तो अंत मते सोगति हो जाएगी, अंत में दुर्गति हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हर आत्मा की रक्षा हमें इस हिसाब से करनी है कि सभी बाबा की तरह संपन्न होके संपूर्ण होके चले परम धाम और हम सब लोगों को वहां जाना है, ये लक्ष्य हमारा और पक्का हो। और साथ में परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हमें ये देखना है, निर्णय शक्ति भी हमारी मजबूत हो और निर्णय शक्ति के साथ साथ सामना करने की शक्ति, ये शक्ति दोनों, क्योंकि परिस्थिति जब आएंगी, हमने परिस्थिति को भांप भी लिया लेकिन अगर सामना नहीं कर सके तो उस परिस्थिति को जानने का फायदा ही क्या होगा। तो इसीलिए परिस्थिति को भांप करके समझ करके हम उसकी यथार्थ रीति से सामना कर सकें, और सामना तभी कर सकेंगे जब बाबा प्रतिपल हमारे साथ होगा। हम समय पर बाबा, मेरे बाबा आओ, बाबा मुझे बल दो, मेरी रक्षा करो। बाबा, बाबा कहता है तुम बच्चे आवाहन ही नहीं करते मेरा, तो मैं कैसे आऊं। लौकिक रीति में भी आवाहन करते हैं, बुलाते हैं तब कोई व्यक्ति, तो बाबा तो इतना बड़ा, तो इसीलिए आवाहन दिल से करें। बाबा, द्रौपदी ने भी जब दिल से आवाहन किया, हे प्रभु आओ, पहले और पांचों पति का और सबका आवाहन करती रही, गुरुओं का, द्रोणाचार्य का, सबका, कोई मदद में नहीं आया। जब भगवान का आह्वान किया तो भगवान ने रक्षा की। ऐसी बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा के लिए, ऑटोमेटिकली राइट चीज टच होगी, हमारे कदम बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और बाबा कहता है बच्चे अंत समय में बच जाएंगे, सच्चे बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली बच जाएंगे अंत समय। बाबा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये उनकी स्थिति हो जाएगी। यही तो चाहिए हम सबको, और क्या चाहिए। तो जल हो चाहे अग्नि हो, वायु हो, आकाश की तरह बेहद हमारा दिल होगा, बड़ा होगा, विशाल होगा, तो बेहद उसके अंदर हम वो सब चीज समाते रहेंगे, आकाश की तरह विशालता हो। तो ये प्रकृति के पांच तत्व, ब्यूटी तो तभी है जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। रक्षा तभी कहेंगे, मरना तो सभी को है, हर एक कोई, दुनिया वाले भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम भी अगर दुनिया वालों की तरह चले गए, ये छत गिरी और छत के नीचे दबे, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, बम गिरा, हम भी चले गए, तो क्या फर्क हुआ। नहीं, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े तो वो सच्ची रक्षा है। और वो अपनी इच्छा से शरीर तभी हम छोड़ सकेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी देखा, बाबा को भी आभास हो गया था पहले ही, तो बस अब मेरा अंतिम दिन है। आज उस दिन बाबा ने पूरा योग कराया, 18 जनवरी को बाबा ने जितने पेंडिंग काम थे वो पेंडिंग पत्रों के उत्तर निपटाए, बाबा ने वो यज्ञ के लिए वो जो नक्की लेक का मकान है वो मकान दिया, और उसमें म्यूजियम है, कितनी सेवा हो रही है। रोज क्लास होती थी 9 बजे, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7:30 बजे ही क्लास कराए। सब भोजन करके आए, सब लोग भोजन करके आए, और वैसे बाबा को खांसी आती थी, लेकिन उस दिन मुरली सुनो आप, अंतिम मुरली, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, और शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर बाबा ने जैसे विजय प्राप्त कर ली। यही स्थिति हमारी हो, शरीर का कोई कर्म भोग हमें खींचे नहीं, यहाँ दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आत्मा नहीं निकल रही है, फलाने की याद आ रही है, नहीं, सब कुछ एकदम आत्मा डिटैच हो करके शरीर से अंतमते सोगते। ये हमारी अपनी भी रक्षा है और दूसरों के लिए भी एक ये उसी बात का सूचक है। तो इसीलिए ये हम तब कर सकेंगे जब मन जीते जगत जीत, जैसे बाबा का बताया ना, बाबा ने मन जीते जगत जीत, बस अंत समय में बाबा के पास जाते थे अंतिम दो दिनों में, और बस बाबा दृष्टि देके ही मन की बात समझ के समाधान कर देते थे। तो ये हमारी स्थिति भी होनी चाहिए, लेकिन ये कब होगी, जब कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। नहीं तो व्यर्थ संकल्प अगर आते रहे ना, तो समर्थ संकल्पों का स्टॉक हमारा इकट्ठा नहीं होगा। इसीलिए व्यर्थ संकल्प से हम बचे रहे हैं, ये हमारा वो हो तो अंत समय में सर्व जो भी आत्माएं आएंगी उनके दिलों की बात को समझ करके हम वो समाधान उनको दे सकेंगे। तो एक ये ऐसी हमारी अंतिम स्थिति हो, और सब हमारी अपनी अवस्था भी ऐसी साक्षी हो, साक्षीपन की स्थिति, साक्षी दृष्टा हो, कुछ भी होता रहे हमारे ऊपर उसका प्रभाव न रहे। किसी निकट प्रिय जन की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, आत्माएं जा रही हैं, तो साक्षी दृष्टा कैसे होंगे? मुख्य रीति से एक तो ये ख्याल रहे, दृष्टा कौन है? दृष्टा आत्मा है, और आंखें जो है ये दृष्टि है, आंखें नहीं देखती, बल्कि दृष्टा आत्मा इन आंखों के दृष्टा के दृष्टि के द्वारा देख रही है। तीसरी चीज हुई आत्मा दृष्टा, आंखें दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य। तो जो भी दृश्य दिखते हैं, दृश्य तो चला जाएगा, जितने भी दृश्य आए वो जाने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए कोई भी दृश्य हमें वहीं अपनी तरफ आकर्षित न कर ले और रोक न ले और हमें बस प्राण छोड़ने में तकलीफ हो। रक्षा ऐसी ही हो, अंत में हम यज्ञ की भी पूरी रक्षा कर सकें, इन्हीं बातों से अपनी भी रक्षा और यज्ञ वासियों की भी रक्षा, जितने भी भाई बहन हैं सबकी। अगर कोई भी दृश्य हमारे पास परमानंद ना आए। चौथी बात, हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हर चीज के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है, एटीट्यूड जो है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जितना हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, उतना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमें बहुत बहुत सेफ रखेगा। और इसी वजह से अंत में भक्ति मार्ग में हमारे ही तो और आपके ही तो दृष्टांत लिखे जाने हैं। पांचवी चीज ये है दृष्टांत। तो ये पांच बातें साक्षी दृष्टा होने में बहुत मदद करती हैं। एक दृष्टा, एक दृष्टि, एक दृश्य, एक दृष्टिकोण और एक दृष्टांत। हमारे दृष्टांत भी जो भक्ति मार्ग में लिखे जाते हैं जाएंगे, वो ये ही ऐसे ही लिखे जाएंगे कि इन बातों के आधार पर ही जितना हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा और जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए ये यज्ञ रक्षक, क्योंकि हम यज्ञ स्नेही हो हैं तभी तो बैठे हैं, यज्ञ सहयोगी भी हैं तभी यहाँ पर आए हैं। हर चीज में हमारा ये होना चाहिए, हम यज्ञ स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, लेकिन यज्ञ रक्षक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि रक्षा ज्यादातर बड़ा बुजुर्ग जो पूर्वज होते हैं वो छोटों की रक्षा करते हैं। तो हम तो पूर्वज हैं, बाबा ने बताया है पूज्य और पूर्वज हो, इसीलिए स्नेही सहयोगी के साथ साथ हम यज्ञ रक्षक होके चलते रहेंगे तो अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को ब्रह्मा बाबा की तरह प्राप्त कर लेंगे। हमने देखा ब्रह्मा बाबा अंत में एक बार भी न खांसी आई, उन्होंने कर्म भोग शरीर के कर्म भोगों के ऊपर कर्म योग ने विजय प्राप्त कर ली और बाबा बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, बस ये कह के बाबा हिस्ट्री हॉल से बाहर दरवाजे तक आए, बाबा कमरे तक गए, दादी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। तो मन जीते जगत जीत तो बाबा ने बना ही लिया, क्योंकि मन की बात को समझ लिया था। अंतिम दिन कितनी बार अनुभव हुआ, और दूसरा प्रकृति जीते जगत जीत, इन दो चीजों का ही खेल है, मन आत्मा का और प्रकृति यानी पांच तत्वों का बना ये शरीर। तो इसको भी हमें अंत में तभी देखा बाबा के कि बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। तब बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी लौट के तब आप आए थे 21 तारीख को। तो इसीलिए लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न शरीर में कोई दुर्गंध आई, न शरीर काला पड़ा, बिल्कुल वैसा। ये है प्रकृति जीते जगत जीत, प्रकृति के पांच तत्वों को भी बाबा ने पावन कर लिया था। तो हमें भी इस तरीके से संकल्प रखें कि बाबा अपनी इच्छा से आपकी तरह हमें शरीर भी छोड़ना है, यज्ञ रक्षक बन के आपकी तरह हमें यज्ञ की, यज्ञवासियों की, अपनी और प्रकृति की सबकी रक्षा भी करनी है, और रक्षक बन के हम संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करके अब अपने घर परम धाम चलते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।